الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی تعریف اور تقدیس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور بہترین پیدا کیا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين بے شک ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا لیکن اس کے بعد پھر وہ نیچوں سے نیچا ہوتا گیا انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس نشست میں ہم تزکیہ پہ بات کریں گے پیوریفیکیشن آف سول لیکن ایک مختلف انداز سے بات کریں گے ابھی آپ کے سامنے میں نے سورۃ روم کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا پس قائم کرو اپنے چہرے کو دین حنیف کے لیے وہی آیت آگئی جس کا اس وقت تقاضا ہے ہم سب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حنیف بنانا چاہتے ہیں اور حنیف کون ہوتا ہے سب سے کٹ کے ایک رب کا ہونے والا فوکسڈ جس کو اپنے ارد گرد کی بالکل ہوش نہ رہے اس چیز سے بے نیاز ہو جائے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور ہم میں سے اکثر جانتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا جب ان کا ذکر آتا ہے تو ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کتنے خوش قسمت تھے اس وقت ہم سب کے لیے بھی خوش قسمت بننے کا موقع ہے اگر اس ایک گھنٹے میں ہم لوگ حنیف ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ باقی زندگی میں بھی آسان ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سیدھے دین کے لیے فوکس ہو جاؤ یعنی ادھر ادھر نہ دیکھو جو اللہ نے تمہیں طریقہ زندگی دیا جو چیز تمہارے لیے ہے بس اسی کو دیکھو اور وہ دین کیا ہے اس کا ذکر آگے ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا فطرت ہے اللہ کی دی ہوئی جس پہ اس نے لوگوں کو پیدا کیا اور فطرت کیا ہے انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے اگلی بات لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی یعنی جس پہ سب کو پیدا کر دیا بس اب سب اسی پہ رہیں گے تو ان کی نجات ہے اور جو تخلیق سے منہ موڑے گا اپنی خلقت سے منہ موڑے گا پھر وہ انسانیت کے درجوں سے گر کے حیوانیت کے درجوں پہ جائے گا ذالک الدین القیم یہ سچا دین ہے سیدھا دین ہے یعنی اتنا سٹریٹ فارورڈ دین ہے کہ جس نے اس ایک بات کو سمجھ لیا پھر پوری شریعت اس کے لیے ماننا آسان ہو جاتی ہے صرف یہی ہے وہ حقیقت جس کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ دین قیم ہے سورۃ بینہ میں بھی اسی کا ذکر ہے نا ذالک دین القیم یہ قائم رہنے والا دین ہے اسی دین کی بنیاد پہ دنیا قائم ہے جب اسلام دنیا سے مٹ جائے گا نا تو انسانیت ختم ہو جائے گی آپ میں سے جو لوگ قرآن پاک کے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ قیامت بدترین مخلوق پہ آئے گی وہ آخری قیامت ہو یا آج کے دور میں اس دنیا میں ٹوٹنے والی چھوٹی چھوٹی قیامتیں ہوں وہ کسی جگہ ڈیزاسٹر کی صورت میں ہو یا کسی جگہ ظلم کے ساتھ بستیوں کو ہلاک کرنے والی صورتیں ہوں یہ یاد رکھیے گا کہ وہ قیامت کبریٰ یا آج دنیا کی قیامت صغریٰ آتی تب ہے جب لوگ دین فطرت سے ہٹ جاتے ہیں مسلمان جب صرف نام کا مسلمان رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ ان کو ختم کر دو اسی لیے اس کو دین قیم کہتے ہیں. اور یہی اعزاز خانہ کعبہ کے لیے بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. شاید آپ لوگوں کو واحد یہ مقام یاد ہوگا, سورۃ آل عمران ہی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حرم کو کیا کہا, قیما للناس,
یہ حرم لوگوں کے قیام کی جگہ ہے. جب تک حرم قائم ہے دنیا قائم رہے گی, اور جب حرم ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بھی ختم کر دے گا. لیکن اتنی بڑی حقیقت ہے جس کو ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لوگوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی کی بات کی. ہم آج تزکیہ پہ بات کرنے والے ہیں, اور تزکیہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور کس پہ ہوتا ہے, اور پھر آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں. لفظ تزکیہ عربی کا لفظ ہے, زا کاف اور یا اس کا روٹ ہے. یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ زکوٰۃ بنتا ہے, پیوریفیکیشن, یا جو ہمارے ہاں زکوٰۃ ایک ٹرمنالوجی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ اردو یا انگلش کے کسی ایک لفظ میں اس کا ترجمہ ہو نہیں سکتا. بالکل جیسے لفظ تقویٰ ہے نا, اس تقویٰ کے لفظ کو بھی آپ جو مرضی کر لیں لیکن وہ تسلی نہیں ہوتی جو عربی کے لفظ تقویٰ میں ہے. کبھی آپ بچنے کے معنی کرتے ہیں, کہیں آپ خوف کھانے کے معنی کرتے ہیں, کہیں آپ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے اس سینس میں استعمال کرتے ہیں. بالکل اسی طرح تزکیہ بھی اس کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے. یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے, لیکن ہم اپنے سمجھنے کے لیے تزکیہ کے لفظ کو کیسے سمجھیں گے کہ یہ اس تڑپ کا پیدا ہونا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو درست کرنا, میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہوں. صفائی کا معنی لے لیں, پیوریفیکیشن, کلینلینس, یہ ڈیول عمل ہوتا ہے, دو رخا عمل ہے. کچھ چیزوں کو اگایا جاتا ہے اور کچھ کو نکالا جاتا ہے. مثال دوں گی کہ جیسے کسان کوئی فصل لگاتا ہے, بیج ڈالتا ہے تاکہ پودا اگے اور اس پودے پہ فصل آئے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جڑی بوٹیوں کو نکالتا بھی ہے. کیونکہ بعض اوقات جڑی بوٹیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں, یہ اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ کھاد اور پانی جو پودے کی پرورش کے لیے تھی وہ جڑی بوٹیوں میں چلی جاتی ہیں, اور پودا اس بلندی پہ نہیں پہنچتا یا اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. اسی طرح تزکیہ کے عمل میں اچھی عادات کو ڈالنا اور بری عادات کو نکالنا, یہ دونوں چیزیں آتی ہیں. اور اس کی اہمیت قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ہے جس کا تذکرہ تھوڑے سے لفظوں کے فرق سے 3 دفعہ کم از کم قرآن پاک میں آتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد نبوت کے مقاصد میں سے تھا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. اور ایک جگہ آتا ہے ولو کرہ المشرکون, ایک دفعہ سورۃ توبہ میں ہے اور ایک دفعہ سورۃ صف میں ہے, کہ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو سچے دین کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ سارے دینوں پر اس کو غالب کر دے. اور وہ کیا پیکج تھا جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم. اے اللہ, گھر تو میں نے بنا دیا تیری توفیق سے, جگہ بھی منتخب ہو گئی, لیکن اب تو یہاں ایک استاد بھیج, ایک معلم بھیج, ایک رسول بھیج. وہ کیا کرے گا, یعلمہم الکتاب, جو ان کو کتاب کی تعلیم دے گا, اور اسی میں ایک لفظ وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف کتاب کی تعلیم ہی نہیں دی بلکہ آپ نے لوگوں کا تزکیہ بھی فرمایا. یہی دو چیزیں آج بھی جمع ہوں گی تو تعلیم کا فائدہ ہوگا. दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ दफ़ा तालीम हासिल करने वाले लोगों में भी वो रंग नहीं होता, वो खूबी और वो खूबसूरती नहीं दिखती जो कुरान वालों में होनी चाहिए, या वो इखलाक और वो किरदार नहीं नज़र आता जो कुरान का मतलूब किरदार है। कमी कहाँ है? आयतों को याद करने में नहीं, तर्जमा याद करने में नहीं, तफसीर के नोट्स बनाने में हरगिज नहीं। कमी जो रह जाती है वो तज़किया में रहती है। तालीम और तज़किया का गहरा ताल्लुक है। मिसाल दूंगी शायद, और मामूली सी मिसालें दूंगी जो हम सब के आम जिंदगी के काम में आने की हैं। बिलफर्ज अगर आप कोई खूबसूरत सी सीनरी खरीद के लाते हैं, कोई पेंटिंग है, आप लेके आते हैं और अपने घर के बेडरूम में या कोई ड्राइंग रूम में आप लगाना चाहते हैं। अब वो सीनरी अपनी जगह बड़ी खूबसूरत है, तसव्वुर में लाएं कोई अच्छी सी, कोई नियाग्रा फॉल की सीनरी, कोई जंगलात, कोई पहाड़ों की तस्वीरें। अब आप जब वो ले के आते हैं, घर बड़ा गंदा, दीवारों पे मट्टी पड़ी हुई है, जाले लटक रहे हैं, चीज़ें सारी बिखरी हुई हैं, पलंग की चादर ख़राब है। अब आप बताइए, अगर इस गंदे घर में आप वो खूबसूरत सीनरी लगा भी देंगे तो उठेगी? क्या कमरे के हुस्न में कोई इजाफा होगा उससे? नहीं होगा, कतन नहीं होगा, बल्कि और ये अजीबोगरीब चीज़ लगेगी। आप कहेंगे कि वहाँ जो देखी थी वहाँ तो बड़ी अच्छी लग रही थी, उनके शोकेस में तो सजी हुई थी, यहाँ क्यों अच्छी नहीं लगती? फ़र्क किस बात का कि कमरे की दीवारें गंदी हैं और गंदी दीवारों पे खूबसूरत तस्वीर उठती नहीं है? बिल्कुल यही कैफियत है हमारे दीन की, इस इल्म की, इस किताब की। जब दिल की दीवारें गंदी होती हैं ना, तो इल्म उठता नहीं है, सचता नहीं है। मुंह से बोल के बताना पड़ता है कि हम इल्म वाले हैं। वजह क्या है कि अभी तज़किया नहीं हुआ? करना क्या चाहिए था? उस तस्वीर को लटकाने से पहले झाड़ पूछ की जाए, दीवारें साफ की जाए, जाले उतारे जाए, वैक्यूम किया जाए, सारी चीज़ें ठिकाने पे रखी जाए, और जब कमरा साफ सुथरा महकने लगे खुशबू से, तो फिर किसी भी एक कील के साथ उस तस्वीर को लटका दें। उठेगा ना? बिल्कुल तज़किए का अमल वही है जो कुरान पाक की तालीम हासिल करने के साथ साथ होगा, और ये मुसलसल अमल का नाम है, कंटिन्यूसली। अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत सलीम पे पैदा किया। अल्लाह ताला सूरत 3 में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द खलकनल इंसान फी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु असफल साफिलीन। बेशक हमने इंसान को आला तकवीम में पैदा किया, यानी तौहीद पे पैदा किया, लेकिन बाद में वो फिर नीचों से नीचा हो गया। हम दुनिया में आते हैं तो बेगुनाह आते हैं। हम चूंकि तज़किया की बात करने वाले हैं ना, साथ साथ करते जाएंगे, लेकिन तज़किया का अमल होना किस पे है? नफ्स पे होना है ना, इंसान पे। तो क्यों ना हम इंसान की थोड़ी सी, आप कह सकते हैं कि इंसान के थोड़े से पुर्जों को समझ लें। ऐसे ही जैसे आप कोई मशीन ऑपरेट करते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, आप बताइए जब आपने ड्राइविंग का पहला लेसन लिया होगा तो आपके ट्यूटर ने आपको क्या सिखाया था? रोड पे दौड़ना, पार करना। मुझे तो पता है कि जब मैंने कोशिश की थी तो मुझे सबसे पहले उसकी सारी चीज़ें सिखाई थी। इवन मुझे आज भी याद है, जब मैंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर अपने शौहर से सीखा था, तो शुरू में इन्होंने मुझे पूरा कीबोर्ड रटवाया था। सुबह जाते वक्त कह के गए थे कि शाम तक तुम्हें ये सारे याद हो, क्यू किधर है, डब्ल्यू किधर है, ई किधर है। हमारा ख्याल था ए बी सी डी ई एफ जी एच होगा, ऐसा नहीं। आप सब जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, क्यू डब्ल्यू या आर टी, और जुबानी याद है, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं उनको याद होता है। तब मैं इनको कहती थी, इतनी मुसीबत क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, सीधा सा कर देते ए बी सी डी। लेकिन अब पता चला है कि ये जो एक कीबोर्ड है, ये इंसान के जहन के मुताबिक बनता है। जो लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उनको हाथों की रेंज में रखा जाता है और जो कम इस्तेमाल होते हैं वो दूर है। और अब यही चीज़ कंफर्टेबल लगती है। मैं बहुत हैरान होती थी, मैं कहती थी आप अंधेरे में कैसे लिख कर लेते हैं ना, ये लोग कीबोर्ड को नहीं देखते, स्क्रीन पे देखते हैं। तो उसके जवाब में मुझे हमेशा एक ही बात सुननी पड़ती है, क्या कि जब आप लिख रहे होते हैं आप लोग पेन से कॉपी पेन पे, तो आप पेन को देख रहे होते हैं कि पेपर को? तो पेपर को देखते हैं, तो उनका पेपर ये डेस्कटॉप है, नीचे हाथ को नहीं देखते। बहरहाल एक बात थी, जब भी हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं ना, तो उस वक्त हम उस चीज़ के पुर्जों को समझते हैं। हम इंसान हैं, शुरू से जानते हैं, हर एक कहता है मैं इंसान हूँ, लेकिन इंसान होता क्या है, बनता किन चीज़ों से है, इसको नहीं समझ पाते। तो साथ साथ कुछ बातें करते हुए थोड़ी सी इंसान की डिस्क्रिप्शन, और उम्मीद है कि हमारे लिए ये बातें नई नहीं होंगी। देखिए कि इंसान के अंदर एक पुर्जा फितरत के नाम पे होता है। अगर आप एक इंसान को डिस्कवर करना चाहें ना, कुछ चीज़ों से मिलके इंसान बनता है, जिसमें एक है फितरत, एक है जबिल्लत, एक है आदत, और चौथी चीज़ है तबीयत। नाम तो ये सुने हुए ना, उसकी ये फितरत है, ये उसकी आदत है, ये उसकी जबिल्लत है, लेकिन ये सब पुर्जे जुड़ते कैसे हैं, हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। पहली चीज़ जो है वो फितरत है, इसी को इंग्लिश में नेचर कहते हैं। और हम बाज़ दफ़ा एक बड़ी तकलीफ दे बात करते हैं, उसकी तो नेचर ही ख़राब है। सुना है आपने कभी? मैं सोचती हूँ कि हम क्या करते हैं, हमें समझ खुद नहीं होती और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पे तनकीद करते हैं। नेचर कभी ख़राब नहीं होती, और इसी का जिक्र है जो सूरत रोम की आयत 30 में मैंने आपके सामने रखा कि फितरतुल्लाहिल्लती फतरुन्नास अलैहा, ये अल्लाह की पैदा करदा फितरत है जिसमें उसने लोगों को पैदा किया। फितरत क्या होती है? कुछ वैल्यूज और कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिखाने नहीं पड़ते, अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में गूंथ दी है। जैसे आटा गूंथते हैं ना, फिर बाद में आप चाहें ना आटे के मुख्तलिफ पार्टिकल्स को अलग करें, आप नहीं कर सकते। या कभी आपकी चुटिया में कोई धागा गूंथ जाता है, आप उसको खींचते हैं तो तकलीफ होती है ना। इस तरह कुछ वैल्यूज और कुछ ऐसे काम है जो इंसान की फितरत में डाल दिए गए। ना माँ सिखाती है, ना बाप सिखाता है, कोई उस्ताद नहीं सिखाता। वो कौन सी है? नंबर एक, मैं आपके साथ पॉइंट्स में बात करूंगी ताकि आपको याद रखना भी आसान रहे। पहली चीज जो इंसान की फितरत में है ना, वो तौहीद है। तौहीद, अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसका तذکرہ भी कुरान पाक में मिलता है, सूरत अल अराफ की। अभी मैं आपको नंबर भी लिखा देती हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको भूलते हैं ना तो गुनाह होते हैं। जी, सूरत अल अराफ की आयत नंबर 172 है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वइस अखज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम वअशहदहुम अला अन्फुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। और जब तुम्हारे रब ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्तों में से उनकी औलादों को पैदा किया और उनसे गवाही ली उनके नफ्सों के खिलाफ, और गवाही के लफ्ज़ क्या थे? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? ये कब हुआ था, इसकी तफसीलात स्टूडेंट्स तो जानते ही होंगे, लेकिन वो लोग जो राह रास्त नहीं पढ़ चुके वो समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया के बिल्कुल इन आगाज में आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पे हाथ फेरा था। हदीस में आता है, हाथ फेरा था, और उसका असर क्या हुआ कि क्यामत तक पैदा होने वाली रूहें रेत के जर्रों की तरह जमीन पे फैल गई, बिल्कुल छोटी चुनकियों की तरह। जैसे आज इंसानों में फर्क है ना, वैसी रूहों में भी फर्क था। शक्लें आज फर्क हैं, आदात फर्क हैं, अखलाक फर्क होते हैं, इसी तरह उनके साथ भी हुआ। जब सारे जमा हो गए तो फिर अल्लाह ताला ने उनसे पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, सारे सवाल उठा के बात की गई है, हमारे दीन का मिजाज सवाल वाला है। अलस्तु भी रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? ऐसे भी तो कहा जा सकता था ना, अना रब्बुकुम। ये नारा किसने लगाया था? फिरौन। ये फर्क है फिरौनियत में और खुदाई में। जो झूठे खुदा होते हैं ना, वो कहते हैं अना रब्बुकुम, रब ने ये नहीं कहा मैं रब हूं, कह सकता था, हकीकत है, नहीं, अलस्तु भी रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? ये ऐसी है जैसे बाज माए अपने बच्चों को कहती हैं मैं तुम्हारी माँ हूँ, चुप करो। गुस्सा से मैं तो उस तरह नहीं कह रही ना जैसे माएँ कहती हैं मैं तुम्हारी माँ हूँ, या बाज शौहर कहते हैं मैं तुम्हारा शौहर हूँ, नहीं, क्या बेटा मैं तुम्हारी माँ नहीं? फ़र्क है ना। ये होते हैं अदब और अखलाक। एक ही बात मुख्तलिफ रंग में की जाए तो उसका असर मुख्तलिफ होता है, एक ही चाय मुख्तलिफ लोग बनाते हैं तो उसका टेस्ट फ़र्क होता है ना। इसी तरह एक ही बात मुख्तलिफ लोग करते हैं तो फ़र्क क्यों होता है? इन्हीं एटिकेट्स का फ़र्क होता है। अल्लाह ताला ने कहा अलस्तु भी रब्बी को, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? ये सवाल था। अब इसका जवाब मैंने, आप सब ने, और वो लोग जो इस कमरे के अलावा पूरी दुनिया में अव्वल से आखिर तक थे, उन्होंने कहा कालू बला, क्यों नहीं अल्लाह ताला? शहीदना, हमने गवाही दी, हमने इसकी गवाही दे दी कि हाँ आप ही रब हैं। फिर अल्लाह ताला इसकी वजह बताते हैं कि मैंने ये अहद क्यों लिया। आप भी सोच रहे होंगे ना, हमें याद रहना था ना कुछ था, अच्छा था बड़े होके लेते, शादी के मौके पे लेते हैं, कोई अहम मौका होता दुनिया में अपनी ज़िंदगी का तब लेते, का नहीं पहले दिन से लिया। क्यों लिया? अंतकुलू यौमल क़ियामती इन्ना खुन्ना अन इबादतिहिम अनहाजा गाफिले, हमने यह अहद इसलिए लिया कि कल तुम ये ना कह दो कि अल्लाह हम तो गाफिल थे, हमें तो किसी ने तेरे बारे में बताया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं खुदा कौन होता है, रब कौन होता है, हमने तो किसी को रब देखा ही नहीं, माना ही नहीं, इसलिए तुमसे यह अहद लिया। देखिए अल्लाह ताला खुद ही हमें सिखा रहे हैं ना कि लोगों को वजूहात भी बतानी चाहिए। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि इस वजह से भी यह अहद लिया, क्या? औ तकुलु इन्नमा अशरक आबाउना मिन क़ब्लु व कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम, ये दूसरी वजह जो आज बहुत लोग बोलते हैं, इसलिए तुमसे इंडिविजुअल लेवल पे इनफरादी तौर पे यह अहद ले लिया कि कल क़यामत के दिन तुम ये ना कहो कि अल्लाह हमारे तो बाप दादा भी शिर्क करते थे और हम तो उनकी औलादें थी। यानी जैसे आज हम कहते हैं कि भाई मुशरिक घरों में पैदा होने वाले बच्चों का क्या कसूर है, फिर वो क्यों मुसलमान हो? आपके बच्चे भी आपसे पूछते होंगे कि जब हम इस्लाम पे हैं तो हम उनको क्यों कहें कि तुम भी इस्लाम पे आओ, और वो हमें क्यों ना कहें कि क्रिश्चियनिटी पे आओ? तो इसी तरह की बात ना कोई कहते कि अल्लाह ताला हमारे बाप दादा ने तो हमें तौहीद की बात ही नहीं सिखाई, हम तो शुरू से नस्ल दर नस्ल मुशरिक थे, इसलिए हम तो तुझे ना पहचान सके। तो दो वजूहात हैं, पहली वजह क्या है कि गफलत के पर्दे चाक करने के लिए, और दूसरी वजह क्या है कि हमारे बाप दादा जो है वो मुशरिक थे, इसलिए हमने ये बात ले ली। तो ये है वो पहली चीज़ जो अल्लाह ने इंसानों की फितरत में रख दी, और वो क्या है कि रब एक है। दुनिया में आने वाला हर बच्चा इसी फितरत पे पैदा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कुल्लु मौलूदन, हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, बाद में उसके माँ बाप उसको यहूदी या नसरानी या कुछ और बना देते हैं। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि अल्लाह को एक मानना फितरत से है। इसी तरह दूसरी चीज जो अल्लाह ताला ने इंसान की इसलिए क्लियर नहीं कि इनके स्पीकर ऊपर है ना, ठीक है, बड़े करीब ले तो आवाज आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। दूसरी चीज जो अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रखी है ना, वो हया है। ये कहाँ लिखी है बात? हया, कोई बताएगा इसकी दलील? आप बताएं, स्टूडेंट्स में से कोई बताए जी। स्टूडेंट्स की सख्ती बहुत आती है वैसे, कोई एक ऐसी अंदाजा बता दें जी आप प्लीज। शाबाश, बिल्कुल ठीक समझे आप। जब शैतान के बहकावे पे वो फल चख लिया जिसको चखना नहीं था, तो क्या हुआ? सूरत अल अराफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, आयत का नंबर भी आप लिख सकते हैं, 22 नंबर आयत है, फरमाया फदल्लाहुमा बिगुरूर, शैतान ने खींच लिया उनको धोखे से, यानी बातों में लगाया। फलम्मा ज़ाक़ अश्शजरता बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िका यहसिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, जो ही वो शाही लिबास उतरा तो दरख्तों के पत्ते उतार के चिपकाने लगे। गोया कि आप कहने के शैतान के पहले बहकावे में आ गए, फल चख लिया लेकिन दूसरे में नहीं आए। हमारी तरह नहीं कि भूले तो फिर भोले ही बन गए। चलो अब गलती हुई है, खैर हम तो गुनाहगार हैं जी, हम कहाँ नेक हो सकते हैं। बात लोगों का ये जुमला अपने आप को एक सर्टिफिकेट दिलाने का होता है, हमें कोई कुछ ना कहे हम तो हैं ही गुनाहगार। आदम ऐसे नहीं थे, कोई सूरत नूर नहीं पढ़ी थी, सूरत अलहजाब नहीं पढ़ी थी, कोई उनको सूरह आराफ नहीं आती थी, किसी ने उनको लेक्चर नहीं दिया था इस बात पे कि जिस्म को छुपाना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने फितरत में रख दी। और जो माएँ हैं ना छोटे छोटे बच्चों की, वो इसकी तस्दीक करेंगी। छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके अंदर हया का मादा होता है। आप बिल्कुल मासूम बच्चे को जब बरहना करते हैं ना, एकदम टांग खींचता है। ये माएँ हैं जो उनकी हया ख़त्म कर देती हैं। सबके बीच में उनके कपड़े बदलना, और हया की बात है, इसलाह की नीयत से कहूँगी कि बाज़ माएँ तो इस तरह हया ख़त्म करवाती हैं जब अपनी मासूम बच्चियों के पैम्पर्स अपने शौहरों से बदलवाती हैं। मैंने ये बात अगर ख़ुद ना देखी होती तो मैं कभी ना मानती। मैंने एक बाप को अपनी बच्ची का पैम्पर बदलते अपनी आंखों से देखा। मजबूरी क्या थी कि माँ जॉब पे थी, मजबूरी तो बहुत बड़ी है ना, लेकिन बाप और बेटी की हया ख़त्म हो गई। आज जब छोटे बच्चों की हया हम ख़त्म करते हैं तो उस वक़्त हम क्यों नहीं सोचते? किसी ने मेरे से सवाल किया, इन्हीं दिनों में किसी जगह पे थे, कहने लगी किस उम्र में बच्ची के लिबास का ख्याल रखना चाहिए। गोद में उनकी बच्ची थी, गालिबन 3-4-5 साल की, आई डोंट नो, छोटी सी बच्ची थी। कहने की किस उम्र में इसके लिबास और वही सतर जो भी होता है उसका ख्याल रखना चाहिए। मैं अमूमन ऐसे सवालों के जवाब में क्या अक्सर ही मैं जल्दी नहीं करती, इसमें तो मैं बिल्कुल खामोश रही। एक दो मिनट मैं खामोश रही, मैंने कहा आपका क्या ख्याल है, आप बताइए। तो फिर कहने लगी ये मेरी बच्ची अभी से नहीं पहनना चाहती कोई ऐसी चीज़ें, मैं जब इसको स्लीवलेस पहनाती हूँ या कोई टांगों नंगी होती हैं तो ये पहनना नहीं चाहती। तो मैंने कहा आपकी बच्ची ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया जी। आप कुछ कह रहे हैं? जज़ाकअल्लाह खैर। मैं दोहरा देती हूँ, शायद ऑनलाइन से भी लोग सुन रहे होंगे। तो इन्होंने कहा कि यहाँ ये चीज़ शुरू से सिखाते हैं, इनकी पोती हुई तो नर्स ने इनके बेटे को बुलाया और कहा कि आप आके बच्ची का पैम्पर चेंज करें और सीखें कि कैसे पैम्पर बदलते हैं। आज उस बात की समझ आई है जो मुझे थोड़े दिन पहले मेरे इल्म में आई। कोई ऐसी जगह है कि जहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को ग्री वाले बन 2 साल की या 9 माह की फ्री छुट्टी देते हैं विद पे, और बाप को भी देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आई थी कि बाप को क्यों देते हैं। एनीवे हया ख़त्म कर दी जाती है, बच्चा हया पे आता है। आज वो माएँ जो अपने बच्चों की जवान होने पे उनके कपड़े और उनके जिस्मों के बारे में परेशान होती हैं, उनके लिए ये नुक्ता है कि शुरू से आपने हया ख़त्म क्यों की। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि पुराने सहीफ़ों में ये बात लिखी थी कि फ़ैसलम दस्तही फस नमा शेता, जब तेरे अंदर हया न रहे फिर तू जो चाहे कर। और आप देख लीजिए हया का बंद टूटता है ना, तो तो बेदीनी का सैलाब जो है वो चारों तरफ आ जाता है। आज क्या ख़त्म है, हया ख़त्म है, यकीन करें। मैं देखती हूँ कि वेस्टर्न कल्चर ने सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों से लूटा है ना, वो उनकी हया लूटी है। अल्लाह को एक मानते भी होंगे, रातों को घरों में नमाजें भी पढ़ते ही होंगे, ज़कात सदकात उम्र हज का शौक भी होगा, लेकिन जो हमारी गुनाहगार आंखें देखती हैं वो लिबास देखती हैं, जो मुसलमान बेटियों के और बेटों के और माँ और बापों के। मैं बाज़ दफ़ा कुछ बच्चियों को देख के सोचती हूँ, इनके माँ बाप जिंदा। ख़ास तौर पर मेरे जहन में एक सवाल आता है कि जिनके बाप जिंदा हों वो तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, और उस वक़्त नाकाबले यकीन हद तक तकलीफ़ होती है जब बच्चियों को बापों और भाइयों के सामने ऐसे कपड़ों में देखती हूँ कि यकीन करें कि एक औरत भी औरत के सामने आने की जुरत ना करें, हया ख़त्म हो गई। अल्लाह ने फितरत दी थी, बेहया होना और बेलिबास होना ये फितरत के ख़िलाफ़ है। आपको पता है कि ये जो नारा लगता है ना कि इंसान बंदर की औलाद है, मशहूर है ना डार्विनिज्म, इसके पीछे भी यही कहानी है। इंसान को बंदर की औलाद कह दो, यानी जानवर की औलाद कह दो, ताकि फिर ये सारे वो काम करे जो जानवर करते हैं, और जानवर ना कपड़े पहनते हैं और ना शादी करते हैं, फ्री सेक्स, ये वही कहानी है पीछे से। लेकिन बहरहाल हया अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रखी, हम सब के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत आती है बेटे और बेटी की सूरत में। उसकी हया को ख़त्म करना या कायम रखना ये हमारे हाथ में। अगर आप चाहते हैं ना कि बड़े हो के बच्चे हया वाले रहें, तो बचपन से ही फिर उनकी हया को कायम रखें। और हया का ज़ाहरी ताल्लुक तो लिबास से होता है, लेकिन सारी हया लिबास में नहीं है, ये एक अपनी जगह पूरा टॉपिक है जो इस वक्त हम डिटेल में नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम सुना देती हूँ तो आपके ऊपर हया का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फ़र्क भी होगा, जिसका ख़ुलासा क्या है कि अल्लाह से भी हया करो। कहा अल्लाह से हया कैसे, कहा कि जहन और पेट में जो है उसकी हिफाजत करो, यानी गंदी सोचें जो आती हैं, लोग तो नहीं जानते कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन रब को तो पता। और पेट में हराम के लुकमे जब जाते हैं ना, तो ये भी अल्लाह से बेहयाई की बातें हैं। अल्लाह ताला हम सबको हया दे। तीसरी चीज़ जो इंसान की फितरत में है वो फर्माबरदारी है, सबमिशन। बंदा अपनी फितरत के इतबार से रब के सामने झुकना चाहता है। وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، دوسرے پارے کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ انسان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے، اور محبت کا لا محالہ نتیجہ سبمیشن ہوتا ہے۔ ہم اس بندے کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ جب ہماری محبتوں کے رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں رہتے نا، غیر سے وہ محبت ہونے لگتی ہے جو اللہ سے ہونی تھی، تو اس کے نتیجے میں شرک پیدا ہوتا ہے۔ پھر فرما برداری رب کی نہیں دنیا والوں کی ہو جاتی ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں چور ہوگا نا، وہ ضرور ہی فرما بردار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا مثال ہے؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب اس کے رب نے اس کو کہا کہ فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے فرما بردار ہوں۔ ہم سب فطرتاً اللہ کے آگے جھکنا چاہتے ہیں، اور مسلم کہتے ہی اس اونٹ کو ہیں جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ بٹھائے تو بیٹھ جاؤ، کھڑا کرے تو کھڑے ہو جاؤ، کھانے کو دے تو خوب کھا لو، کئی کئی دن نہ مانگو، اور نہ ملے تو کئی کئی دن بھوکے رہو، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اور جب اسلامی اصطلاح میں یہ آتا ہے، صبح کے بھی درس میں آج ہم نے بات کی اس پہ، جو لوگ سن رہے تھے، جب مسلمان کو مسلمان کے طور پہ لیتے ہیں، جیسے کہ آج کے دور میں وی آر مسلم کی ایک ٹرم ہے، تو پھر وہ مسلم کیا ہے کہ وہ بندہ جس کی نکیل اس کے رب کے ہاتھ میں ہو۔ تقدیر کے پٹے ڈلے ہوئے ہماری گردنوں میں، सुबह शाम 3 बार कहलाया जाता है, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मोहम्मद नबीया। इसलिए सबमिशन, उस एक के हो जाएंगे ना तो बहुत सारों के बनने से बच जाएंगे। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से दिलाता है आदमी को निजात। जो एक रब का बन जाता है ना, सारी दुनिया उसकी बन जाती है। और जो एक रब का नहीं बनता ना, वो दर दर का भिखारी बन जाता है। इसीलिए रब का बनने में आफियत है। और एक रब को मनाना आसान है, सारी दुनिया को मनाना मुश्किल है। लोग कहते हैं मैंने इतनी कोशिश की फलां को खुश करने की, वो तो खुशी नहीं हुए। मैंने तो अपनी जवानी गला दी इनके पीछे, खुशी नहीं हुए। इनके तो मूड ही नहीं ठीक होते। तो आपने गलती की, आपको ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, आप अपने रब का हुक्म समझते हुए उनकी खिदमत करते ना, तो अल्लाह ताला आपको उनको आपसे राजी कर देता, या आप उनको राजी कर पाते। इसलिए फरमा बरदारी बहुत लाजमी है। जब कोई नॉन मुस्लिम आपको कहे ना कि आई एम अ क्रिश्चियन या आई एम अ फला या कोई भी नाम, तो आप कहा करें कि नो, यू आर मुस्लिम, बिकॉज कुल्लु मौलूदिन, हर बच्चा यू लदोल फितरा, फितरत पे पैदा होता है। ठीक, तो हमारी फितरत में है कि हम अल्लाह की बात माने। पांचवी चौथी चीज जो इंसान की फितरत में है वो क्या है? इल्म की तलब। इंसान फितरी तौर पे इल्म हासिल करना चाहता है। इसकी दलील कोई देगा? जी क्या बताइए? ठीक है, इकरा बिस्मी, लेकिन ये तो आखिर है ना? नहीं, ये तो हमारी शरीयत में आया ना। हम इस वक्त मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, इंसानियत की बात कर रहे हैं। जी आप वो नहीं है इसमें, वो अलग है, वो आगे आएगा। जी आप खोलो। काफी करीब है माशाल्लाह। ये अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा। आप सूरत बकरा का अगर आयत, सूरह बकरा की अगर आयत नंबर 30 से लेके तकरीबन 34-35 तक देखेंगे, तो आपको ह्यूमन बिहेवियर की ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फतलक्का आदमो में रौब भी कलीमातें, इनके हासिल करने की अर्ज और तड़प अल्लाह ने इंसान के अंदर रख दी। अब जब हम इस इल्म को बिस्मी रब्बी का वाला इल्म नहीं करते ना, जैसे इकरा बिस्मी रब्बी कल्लज़ी खलकता, तो हमारा इल्म सिर्फ फनून तक रह जाता है। वो दुनिया के फन है, मेडिकल का फन, केमिस्ट्री का फन, जैसे दुनिया के जो हमारे नॉलेज है। एक रिवायत बड़ी कोट की जाती है, हालांकि रिवायत भी ज़यीफ़ है, कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें उसके लिए चीन जाना पड़े। ज़यीफ़ रिवायत है, लेकिन उसमें भी जो इल्म है ना, वो अल इल्म नहीं है बल्कि दुनियावी उलूम है। ठीक है, तो बहरहाल इल्म हासिल करना इंसान की तलब है। चलिए कुछ बात कर लें खवातीन पे, क्या ताल्लुक है इल्म से? कब पैदा होता है ये ताल्लुक हमारा? देखिए, एक तो है ना रस्मी तालीम जो हम बच्चों को शुरू से देते हैं, नाजरा पढ़ा दो, ताकि कुरान एक दफा पढ़ ले, हमारा मुर्दा बख्शा जाए। फिक्र लगी होती है माओ को कि बच्चा अभी कुरान नहीं पढ़ा, और यहाँ आके तो मैंने देखा वो फिक्र भी नहीं है। 13, 14, 15, 16, 16 साल की बच्चियां अरबी नहीं पढ़ी हुई। मैं खुद पूछती हूँ, मैं जो भी बात आपसे करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं फर्स्ट हैंड वो बात पहले उनसे कर चुकी हूँ। चंद एक आध वीक पहले मेरी 2-3 बच्चियों से बात हुई, मैंने कहा कुरान कितना आता है, कितना समझते हो? मैंने तो कुछ और ही सोचा था कि उर्दू में पूछूंगी, इंग्लिश में कहेंगी नो वी अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। मैं कहा माशाल्लाह इंग्लिश में समझ आता है, अरबी कहती नहीं आती, अरबी में नहीं समझ आता। मैंने कहा ऑफकोर्स वो किसी को नहीं आता, जब थोड़ी सी बात की तो पता चला अरबी पढ़नी नहीं आती, सिर्फ इंग्लिश में जो हम नॉन मुस्लिम्स को कुरान देते हैं ना, जिसमें सिर्फ तर्जमा होता है वो पढ़ सकते हैं। कहाँ जाएंगी ये नस्लें? जिनका ताल्लुक हमने अल इल्म से काट दिया, वो हमें कहाँ लेके जाएंगे? सोचने की बात है। वो मजहब या वो शरीयत जिसका पहला लफ्ज इकरा बिस्मी रब्बी का था, आज उस उम्मत का इल्म के साथ ताल्लुक है। हम में से हर एक देखे, किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि हम अपने कामों के लिए बैठे हुए हैं। तो लिहाजा इल्म की तलब, इसके बाद एक अगली चीज़, उनकी जरूरत नहीं है, प्लीज़ बंद कर दो, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन जो है ना, वो फिर रिकॉर्डिंग में जाती है। आपको गर्मी लग रही है? मुझे तो होश भी नहीं गर्मी सर्दी की। आपको पता है कि सहाबा कराम जब बैठते थे, तो ये भी आपने साबित कर दिया इल्म की बात पे है। हम इतने नरम कारपेट्स पे बैठते हैं, नरम कुर्सियों पे बैठते हैं, इल्म नहीं आता जिस्म की राहत के साथ, इल्म नहीं आता। अभी पंखे चलेंगे, आप सो जाएंगे, खासतौर पर जो लंच करके आए, अपने आपको जमा के बैठे। अल्लाह अकबर, बात ही भुला दिया आपने। चलिए अगली चीज़ पे चलते हैं। एक और चीज़ जो अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रखी है ना, वो क्या है कि इंसान अपना मुहासबा करना चाहता है, अकाउंटेबिलिटी का एहसास। गलत काम कर लेता है लेकिन बाद में पछताता है, ये मैंने क्या किया। होती है बात, कोई गलत काम करते हैं उसके बाद एकदम अंदर से क्या चोट आती है, क्या जरूरत थी ये देखने की, क्या जरूरत थी लेने की, क्या जरूरत थी ये खाम खा। ये मुहासबे का एहसास है। इसका जिक्र भी कुरान पाक में आता है कि यानी इंसान खुद अपने हाल को खूब जानता है। सूरत क़यामत की बिल्कुल इब्तदाई आयात है कि बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलौ अल्क़ा मअज़ीरा, बल्कि इंसान अपने आप को खूब जानता है, चाहे दूसरों के सामने कितने उजर पेश कर दे लेकिन उसको अपनी हालत का पता है। और कुरान पाक में भी आता है ना, फल हमहा फजूरहा वतक्वाहा कद अफलह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। हमने इंसान के अंदर नेकी और बदी का फ़र्क पैदा किया है, उसके अंदर फजूर भी है, गुनाह की रग़बत भी है और तकवा भी है, लेकिन फलाह पा गया वो जिसने अपना तज़किया किया, और नामुराद नामुराद हो गया जिसने उसको दबा दिया। दस्साहा यानी जैसे कब्र में दफन करते हैं ना, यानी उसको बिल्कुल दबा दिया। तो इंसान को कोई कहे ना कहे गलत काम करके उसको खुद पता चल जाता है, आप पता चलता है। इसी का नाम फुरकान भी है। वमें युमिन बिल्लाही यहदी कल्बा, इसी तरह सूरत अनफाल में आता है कि वमें यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, ये सूरत उसकी आयत है तलाक की है। ये फुरकान का लफ्ज यहाँ आता है, वमें यत्तकिल्लाह यजअल लहू फुरकाना, सूरह अनफाल की आयत है कि जो अल्लाह से डरेगा ना उसको अल्लाह ताला उतना फुरकान देगा। ये अपना मुहासबा करने की जो कैफियत है ना, ये अल्लाह की नेमत है, इसको मांगिए, यकीन करें। कोई उस्ताद हर लम्हे आपके साथ नहीं रहेगा, कोई सिक्योरिटी मैन, कोई थानेदार, कोई चौकीदार, कोई पुलिसमैन हर वक्त आपको चेक नहीं करेगा। हाँ, एक चौकीदार है जो अल्लाह ने इंसान के अंदर बिठा दिए, और उसका अपना नफ्स है। ये नेमत अल्लाह से मांगनी चाहिए। आपको पता है कि हमारे असला अल्लाह ताला से मांगा करते थे, और आप देखिए कि ये जो कैफियत है ना, ये तकवा के साथ भरती है। आप में से जिन लोगों ने सूरह सवाफात या सूरह स्वाद पढ़ी है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ही किस्सा, दुम्बियों वाला। एक शख्स 99 दुम्बियाँ लेके आया, दूसरे के पास एक ही थी, वो जिसके पास 99 कहता है ये एक भी मुझे ही दे दो, ये 100 पूरी हो जाए। ये नहीं सोचा कि उसके पास तो एक भी नहीं रहेगी। तफसीर में आता है कि इस वाक्य से वो अपनी ज़िंदगी के किसी मामले पे चले गए कि शायद मुझे तो नहीं अल्लाह ताला कुछ सिखा रहा। लेकिन यकीन करें, ये वो नेमत है जिसके लिए जितना रो लें रब से मांगे, और जितना तकवा बढ़ेगा ना, उतनी वक्त से पहले आपको पता चल जाएगा। कुछ लोगों को गुनाह करने से पहले ही रोक पड़ जाती है अंदर, डोंट डू दिस, गलत है, मत करो, नाफरमानी कर रहे हो, नमक हरामी करोगे। कुछ लोग होते हैं उनको ऐन गुनाह करने से पहले पता चलता है, उससे एक और करीब आ गए ना कदम, बिल्कुल गुनाह करने से पहले आता है कि मत करो। उससे भी कम तकवा होता है ना, तो गुनाह करने के दौरान ख्याल आता है गलत कर रहे हो, लेकिन उससे भी तकवा कम होता है ना, तो करने के बाद ख्याल आता है, और जब तकवा बिल्कुल खत्म हो जाता है ना तो ख्याल ही नहीं आता। कहते हमने क्या किया जी, आप मुझे बताएं मैंने किया क्या। किसी का जुमला नहीं मुझे भूलता, कहने लगी आप हमें क्या बनाना चाहते हैं, आपको हम क्या बनाएंगे, नमाजें हम पढ़ते हैं, हम हज करते हैं, उम्रे करते हैं, अब हम और क्या नेकी करें। यानी जो बड़े ईमान से कहते हैं हमें तो अपना कोई गुनाह नहीं नजर आता, पता नहीं ये किस चीज की सजा हमें मिल रही है, ये तकवा की कमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस की रिवायत है कि मोमिन गुनाह करता है और गुनाह से ऐसे डरता है जैसे उसके पास एक पहाड़ है और वो भी अपनी जगह से उठ के उसके सर पे गिरेगा और उसके नीचे दब जाएगा। और इसके बरक्स फाजिर गुनाह को क्या समझता है, जैसे नाक पे मक्खी बैठी और हाथ से उड़ा दी। हाँ छोड़ो सब करते हैं, इतनी क्या बात है, लोग इतने भी अब सख्त होने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा इंसान के अंदर तकवे का कम या ज्यादा होना उसके अंदर इस एहसास को कम या ज्यादा करता है। इसी से फिर इंसान के अंदर अपने गुनाहों का एहसास पैदा होता है। ठीक है, फिर इसी तरह एक और चीज है, तो बहुत सारी फितरत की, अगर मैं सारी बातें आपके सामने रख दूं तो शाम हो जाएगी, इससे भी ज्यादा हो जाएगा, हम बुरा नहीं करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको जिस नुक्ते पे ले जाना चाहती हूँ उसके लिए ये चीजें मददगार होंगी। एक और चीज जो इंसान की फितरत में है वो क्या है, कि ये दुनिया मेरा अबदी घर नहीं है। अल्लाह ताला ने ये बंदे के दिल में डाल दिए कि ये दुनिया मेरा अबदी घर नहीं है। ये जो हम दुनिया इकट्ठी करते हैं ना, इस एहसास को, इस फितरत को मसख करके खत्म करते हैं। फितरत का तकाजा ये है कि मैंने यहाँ नहीं रहना, यहाँ से निकल जाना है। ये एहसास कहाँ से आया, इसकी कोई दलील बताएगा जी, आप बताइए जी। ये तो हदीस है ना, कोई और बात है? मैंने शुरू में आपको एक हिंट भी दिया था जी, इधर से आप वैसे तो ले जाया जाता है ना, खुद तो कोई नहीं जाना चाहता। कुल्लु मन अलैहा फान जी, आप थोड़ी सी बात करीब है लेकिन वो बात नहीं है जो असल में। मैंने जुमला क्या बोला जी, आप खोला कुलना भी तू मिन्हा जमिया फइम्मयातीयन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब आदम अलैहि सलाम ने दरख्त का फल चखा तो अल्लाह ताला ने जन्नत का लिबास उतार दिया, उतरवा दिया और कहा अब दुनिया में चले जाओ, नाराजगी के सब कहा ना। फिर आदम और हव्वा को एहसास हुआ कि ये क्या किया, फिर अल्लाह ने ही सिखाया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जब ये सीखा ना पढ़ते रहे जब तक अल्लाह ने चाहा, तो अल्लाह ने कहा ठीक है माफ़ कर दिया। फताब अल्लाहु अलैह इन्नहु हुवत्तव्वाबुर रहीम, बस अल्लाह उन पे मेहरबान हुआ और वो है ही बड़ा मेहरबान। उसके बाद फिर आदम ने क्या कहा था, अल्लाह वापस ले जा दुनिया, अब वो दुनिया में रहने नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि अल्लाह वापस ले जाए। तो फिर क्या कहा था आदम, फइम्मयातीयन्नकुम मिन्नी हुदा, ये अर्ज कि ठीक है अब अल्लाह ताला आपने माफ़ कर दिया है ना, हाँ जी कर दिया है, तो फिर वापस ले जाओ जन्नत में, मुझे इस दुनिया में रहने ही नहीं। तो ये इंसान की फितरत में ये बातें। आप शायद अभी कहेंगे कि हमें क्यों नहीं याद और दुनिया के बहुत सारे लोगों को क्यों नहीं याद, उसकी कुछ और वजह है ना। लेकिन फितरतन अगर एक बच्चे, जो मैंने अभी तक 7-8 नुक्ते दिए ना, अगर कोई बच्चा दुनिया में आते ही बोल सके ना ये जितनी बातें और इसके साथ जितनी और बातें, वो बिल्कुल बोलेगा। एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में बोले थे, पहला कलाम क्या था, इन्नी अब्दुल्ला, سورت مریم میں دوسری رکوع میں میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے نا، اس فطرت کی پہلی چیز کیا تھی؟ توحید. یہ نہیں کہا کہ انا ابن مریم، اس وقت موقع تو یہی تھا نا کہ ابن مریم کہیں، کیا کہا؟ عبداللہ. اس وقت جو بات عیسیٰ نے کہی نا، آج بھی ہر پیدا ہونے والے بچے کو اگر زبان دے دی جائے وہ یہی بولے گا، انی عبداللہ. اس سے پوچھو حیا کیا ہوتی، وہ آپ کو پورا دین سکھا دے گا. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شروع کے کوئی سال دو سال زبان بند رکھی ہے، اس میں بڑے راز ہیں. ورنہ بچہ تو وہ غیب کے پردے چاک کر دے ہم پہ کہ ہم حیران ہو جائیں. اس کے ان معاملے بڑے خوبصورت ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے نا ان باتوں پہ، لیکن بہرحال انسان کی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں. اسی طرح کچھ برائیوں کی پہچان بھی فطرت میں کروا دی گئی. چاہے کسی کو کوئی موقع لرننگ کا نہ بھی ملے نا دنیا میں آنے کے بعد، لیکن کچھ برائیاں ایسی ہیں جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے. مثلا انسان کی فطرت کہتی ہے کہ جھوٹ نہ بولو. سچ ہے؟ کوئی مذہب دنیا کا ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. بڑے سے بڑا مطلب دین سے دور بندہ بھی یہ کہے گا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. دھوکہ دینا کوئی نہیں مانے گا نا. اسی طرح چوری کرنا کوئی بھی نہیں مانے گا. یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے فالہمہا فجورہا و تقواہا، ہم نے اس کے اندر فجور اور تقویٰ ڈال دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں یہ چیزیں ڈال دی. اب آپ دیکھیے کہ فطرتاً ہر انسان مومن ہے. مومن ہونا یا مسلمان ہونا کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے، یہ اوپر سے اڑانے والی چیز نہیں، یہ سکھانے والی چیز نہیں ہے. آپ کہہ لیں کہ جینیٹیکلی ہر بندہ مومن ہے، ہر بچہ صحیح سلامت فطرت لے کر دنیا میں آتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیچر صحیح فطرت پہ پیدا کرتی ہے، لیکن ہماری تربیت نرچر یعنی نرشمنٹ کرنے کے انداز جو ہے نا، وہ فطرت کو بدل دیتے ہیں. ہر بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ مانگتا ہے، کوک نہیں مانگتا. فطرت ہے دودھ، کوک، شراب، یہ کیا ہے؟ یہ غیر فطری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس چیز پہ لگا دیا کہ جو چیز انسان کا مقام فرشتوں سے بلند کرے. یہ جو سورت 3 کی آیت ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، یہ بات بتاتی ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا. احسن تقویم کیا؟ ساری مخلوقات میں سے اعلیٰ. انسان کو مسجود ملائکہ بنایا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. کیوں بنایا؟ کہ جب وہ اس فطرت پہ قائم ہے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ فطرت کا ہم تھوڑا سا سمجھ گئے نا. چلیے اب نیکسٹ سٹیپ پہ چلتے ہیں. فطرت کا تعلق روح سے ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میری روح، ہم انسان دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک روح اور ایک بدن. یہ جو ہمارا جسم ہے نا، فزیک، 4-5-6 فٹ کا، کوئی موٹا کوئی لمبا کوئی پتلا، کسی کی ناک لمبی کسی کے، جو بھی ڈفرینٹ فیچرز ہیں نا، ہم دو چیزوں سے مل کے بنے ہیں. اصل چیز روح ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری روحیں پیدا کی تھی. یہ جو جسم کا ہمیں دیا ہوا ہے نا کور، یہ ایسی ہے جیسے ایک ریپنگ پیپر. جو کلاس میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو مثال یاد آئی ہوگی، یاد ہے کسی کو ایک تفسیر کی کلاس میں یہ مثال ہو چکی ہے. آپ کلاس لیتی؟ الحمدللہ. چلے مجھے اجازت دے میں ان کو بھی بتاؤں. آپ دیکھیے کہ آپ کو کوئی گفٹ ملتا ہے یا آپ کسی کو یعنی کچھ دینا چاہتے ہیں، آپ اپنی مثال لے لیں. مثال ہے اپنے ایک موتی پل کوئی بھی ایسی چیز اس کو دینی چاہیے، آپ ہاتھ میں تو نہیں پکڑاتے نا، آپ اس کے لیے ایک ڈبیا لیتے ہیں، بڑی خوبصورت سی، جو جیسی بھی چیز ہوتی ہے جیسے آپ کا تعلق ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ اس کو ایک ریپنگ پیپر میں ڈالتے ہیں، پھر آپ اس کے اوپر ایک ریبن ڈالتے ہیں، تسلی پھر بھی نہیں ہو رہی، پھر آپ ایک پھول لگا دیتے ہیں. اب جو ہی وہ ایک چیز کسی کو ملتی ہے جس کو آپ نے دی ہے یا آپ کو کسی نے دی، ایک دم دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ واہ کتنا خوبصورت پھول ہے، ریبن، ریپنگ پیپر. असल निगाह कहाँ होती है? अंदर क्या होगा? बाहर से इतनी प्यारी है, अंदर क्या होगा? फिर आप बड़े अप लेके आप कहते हैं, नहीं मैं ये फूल तो बिल्कुल संभाल के रखूंगी। आप रिबन खोलते हैं, आप रैपिंग पेपर खोलते हैं, यानी आप वो चीजें बड़े प्यार से खोलते हैं, लेकिन जो ही आपकी निगाह उस मोती पे पड़ती है ना, कहते हैं वाह। जो ही असल गिफ्ट खुलता है ना, तो फिर आखिर में रैपिंग पेपर्स का क्या होता है? उसको मुचड़ मुचड़ के आप बिन में फेंकते हैं। बिल्कुल यही चीज हमारी रूह और हमारे इस बदन की है। अल्लाह ने हमारी रूहें पैदा की थी। जो तोहफे हमें मिले हैं ना अल्लाह से, वो हमारी रूहों के हैं। वह नफख तो फी में रूह है। अल्लाह ताला कहते हैं, मैंने आदम का जिस्म बनाया, फिर उसमें अपनी रूह डाली। अब रूह है मोती की। अल्लाह ताला ने रैपिंग पेपर कैसे लगा दिए? मुख्तलिफ तरह के। किसी को ब्राउन रैपिंग पेपर में रैप कर दिया, किसी को काले में, किसी को गंदमी में, किसी को सफेद में, किसी को प्लेन में बेदाग स्किन, किसी को पिंपल्स वाले में। ये कुछ भी नहीं है। जो ही मौत आती है ना, ये बदन का रैपिंग पेपर ट्रैश करके इसको कब्र में डंप कर देते हैं और रूह अल्लाह ले जाता है। इसीलिए कहा ना, वमा अदरा कमा इल्लियोन किताबुम मरकूम यशहदुहुल मुकर्रबून। अल्लाह अपने मुकर्रब बंदों की रूहें अपने पास ले जाता है, फिर उनको इल्लियीन के दफ्तरों में रखता है, और शहदा को तो साथ ही जिस्म भी दे देता है, और वह सब परिंदों की तरह जन्नत में घूमते फिरते हैं। और फाजिर और काफिरों की रूहें, वमा अदरा कमा सिज्जीन किताबुम मरकूम। सिज्जीन के घड़ों में, अल्लाह जमीन के घड़ों में उनको फेंक देता है। जहन्नुम के दरोगा उनकी रूहों को कैद कर लेते हैं। असल चीजें रूह थी, हम किसके तकाजे निभाने लगे? हम 24 घंटे में से जितने घंटे हम शऊर के साथ काम करते हैं, किसके तकाजे पूरे करते हैं? सिर्फ आप ए टू जी अपने घर की एंट्रेंस से लेके बाहर निकलने तक सारी चीजों को सोच लें। मैं ये नहीं कह रही नाजायज है। हम खाते क्यों हैं? जिस्म को मजबूत करना। पहनते क्यों हैं? इस जिस्म को खूबसूरत करना। स्वेटर सर्दी से बचाना है। गर्मी एसी किस लिए है? हीटर किस लिए है? सोचिए जरा, क्या कुछ है? कंफर्टेबल गाड़ी क्यों है? आराम से बैठे काउचिस क्यों है? मैट्रेसेस, गद्दे, आला घर। अभी गर्मी किसको लग रही थी? रूह को कि बदन को? बदन को लग रही थी ना। सारा दिन खाने किसके लिए पकाते हैं? बदन के लिए पकाते हैं ना। रूह की गजा क्या थी? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नल क़ुलूब। जान लो कि अल्लाह के जिक्र में दिलों का इत्मीनान है। हमें अल्लाह ने असल रूहों की खिदमत के लिए भेजा था कि जाओ, मेरी तरफ से वही आएगी और तुम इस रूह के तकाजे पूरे करना। हम इस जिस्म के तकाजों में लगे और ये जिस्म पाल के मोटा करते हैं और कल कब्र के अंदर डंप कर दिया जाता है। कोई ताल्लुक नहीं रहता बदन का रूह का। बंदा गल जाए, सड़ जाए, चल जाए, एक कब्र में 10-10 को डाल दें, अल्लाह चाहे तो जिस्म भी बचते हैं, वरना मुर्दे की रूह को बदन से कोई ताल्लुक नहीं रहता। ये अल्लाह के फैसले हैं। असल चीज रूह है। ये जो अभी तक हमने बात की है ना, फितरत, इसका ताल्लुक हमारी रूहों से है। रूह का असल हुसन फितरत में है, ठीक है? और फितरत का ताल्लुक इंसान से है। जो बंदा फितरत के तकाजों को पूरा करता है ना, बिल्कुल नेचुरल चीजें है ना, फिर उसका दिल इस दुनिया में नहीं रहता। क्योंकि रूह तो असल में मेहमान है इस दुनिया में। आसमानों में जाना है इसने, इल्लियीन में जाना है। जो बंदा अपनी फितरत को मसख नहीं होने देता ना, उसका दिल इस दुनिया में नहीं लगता। वो अल्टीमेटली एक ही चीज चाहता है कि मैं रब के पास जाऊं। इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी प्यारी हदीस के जरिए साहब कहा था, कुन फि दुनिया का अन्नका गरीबन औ आबिर सबील। तुम इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम अजनबी हो, स्ट्रेंजर, और रास्ते में चलते हुए मुसाफिर, ट्रांजिट पैसेंजर। असल मुकाम वो है। ये दुनिया क्या थी? रास्ता, पैसेज। और ये हकीकत अबू जर को बड़ी अच्छी समझ आ गई थी कि जब उनसे किसी ने पूछा कि भाई आपके घर में सामान ही नहीं है, कहाँ दूसरे घर रखा हुआ है? कहाँ, अच्छा दो घर होंगे माशाल्लाह इनके। कहाँ वो कहाँ है? कहाँ यहाँ तो नहीं है भाई, यहाँ भी कुछ रख लेते, किधर है? कहाँ यहाँ का मालिक मुझे यहाँ रहने ही नहीं देता। और मुसाफिर कौन होता है आजकल, हमसे पूछ ले। इतने कंफर्ट में, इतने आराम में, आगे पीछे खिदमत करने वाले, लेकिन इंसान मुसलसल सफर में है ना। ये जिंदगी है ही सफर, ये दुनिया हमारा ठिकाना नहीं। जो बंदा है मोमिन होता है ना, उसकी असल तमन्ना क्या होती है कि मैं अपने रब को मिलूं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज बंदा है मोमिन की मौत है। सुनी नहीं हदीस? ये सब सुनी होगी आपने, ये सिर्फ जुड़ रही है अपनी अपनी जगह पे। ब्लॉक्स होते हैं ना उसके, पजल के, ये हमारे जहन में चीजें होती हैं लेकिन हमें चेंज करनी आती है। कहा कि बंदा मोमिन की मौत है। अल्लाह के बंदो, मौत कैसे तोहफा हुआ? क्यों? हाँ, वो तो रब से मिलना चाहता है। उसकी दो ही तमन्ना है, कौन कौन सी है? अल्लाह की मुलाकात और जन्नत। और ये दो चीजें ऐसी हैं कि इसके लिए अल्लाह का वादा है कि ये दुनिया में नहीं हो सकती। हजरत आयशा ने फरमाया कि अगर कोई ये कहे कि अल्लाह के नबी सल्लम ने अल्लाह ताला को दुनिया में देखा इस हाजिर में, तो उसने झूठ बोला। मेराज पे भी अल्लाह के नबी की मुलाकात नहीं हुई थी, तमन्ना थी, हो लेकिन हो नहीं सकती। इसके लिए मौत की घाटी से गुजरना पड़ता है। इसीलिए फरमाया, जब एक मौत, एक ईमान वाले की मौत आती है ना, फिर ये वक्त उसकी खुशी का होता है कि उसको उधर से आवाज़ें आती हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इर्जी इला रब्बिकी राधियतम मर्दिया फ़दखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान वाली रूह, चल अपने रब की तरफ इस हाल में कि वो तुझसे राजी और तुझसे राजी। चल मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नतों में दाखिल हो जा। फिर चैन आता है बंदे को, फिर मुतमईन होता है। एक सहाबी सारी जिंदगी नेमतों में थे, नेकियां भी करते थे लेकिन बेचैन रहते थे, रोते रोते रोते। कुछ लोग होते ना दुखी दुखी, लेकिन जब मौत का वक्त आया तो जिस्म जख्मों से चूर था लेकिन चेहरे पे बड़ा इत्मीनान था। कहा, ये बताइए कि जब दुनिया में नेमते थी तो आप रोते रोते थे, आज आप चूर चूर है जख्मों से और आपकी कैफियत इतनी इत्मीनान वाली क्यों है? कहा, इसलिए कि जिंदगी भर नेकियां करता था लेकिन गम ये रहता था कि पता नहीं जब मौत आएगी तो क्या कर रहा होगा। और आज मेरा इत्मीनान इसलिए कि मैं अपने रब की रजा पे मर रहा हूँ। जब बंदे की रूह फितरत के हमाहंग होती है ना, फिर वो तीर खा के भी क्या कहता है, फुस्तु भी रब्बी काबा। एक सहाबी के तीर लगा था और जुबान से आखिर ये लफ्ज थे, फुस्तु भी रब्बी काबा, काबा के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। घर नहीं बना था उनका अपना उस दिन, कोई जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन उनकी कामयाबियों के मैं आप कितने फर्क थे। ये बातें सुन के एहसास होता है ना कि सहाबे कराम के मेयार क्यों फर्क थे। वो पूरे घर का सामान दे के भी खुश थे, हम पूरे घर का हासिल करके भी खुश नहीं है। वो मुकाबले करते थे कि आज देखना मैं अबू बकर से ज्यादा नेकियां करूंगा, मैं आधा सामान लेके जा रहा हूँ। अब पता चला वो सारे ही लेके आ गए। काज के बाद मुझे यकीन हो गया मैं अबू बकर से ज्यादा नेकियां कर ही नहीं सकता। 7 दफा या 8 दफा गज़वे तबूक के मौके पे उस्मान गनी ने अल्लाह के नबी को अल्लाह के रास्ते में 100 100 ऊँट दिए। हर बार अल्लाह के नबी कह रहे हैं, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान तू जन्नती है, आज के बाद कुछ भी ना कर तो तू जन्नती है। हम होते तो उसकी खुशी में पार्टी रख देते, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, आओ बैश करते हैं। नहीं, दोबारा फिर खड़े हो रहे हैं उस्मान। क्यों? उनके दिल इस दुनिया में नहीं लगते थे, ईमान वाले इस दुनिया के लिए नहीं बनता। फितरत जिंदा करने की जरूरत है आज के दौर में। मत दर्स दें आप सूद पे, नमाजों पे, रोजे पे, हज पे, कोई फायदा नहीं है इसका अगर फितरतें मसख हैं। जब इंसान की फितरत जिंदा होती है ना, तो उसको इस दुनिया में रह के आखरत नजर आती है। एक सहाबी थे, कहने लगे, मुझे उहद पहाड़ के पीछे से जन्नत की खुशबू आ रही है। मैं सोचती हूँ कि वाकई हम भी उसी जन्नत की तमन्ना करते हैं जिसमें अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक को जाना था। हम अपनी फितरतों को मसख करके जन्नत में जाना चाहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए उस चीज़ को ज़िंदा रखना है। फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे दुनिया में फरिश्ते सलाम करेंगे, फिर इत्मीनान मिलेगा, ला खौफ़न अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला कहते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़न अलैहिम वला हुम यहज़नून, ग़ालिबन सूरह यूनुस की आयत 30-40 है कुछ, कि जान लो कि अल्लाह के जो बंदे हैं उनको कोई खौफ और कोई गम नहीं। आप नहीं देखते दुनिया में कुछ लोगों को गम फिक्र खुशी, वो मुतमईन, मिल गया तो भी ठीक है, ना सर पे चढ़ गए इतना कि पता नहीं क्या हुआ, और कुछ छिन गया कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्या है, इसको भी आज जोड़ लें इसके साथ, क्या सिखाया हमें मौतों के और गमों के वक्त, इन्ना लिल्लाह, ये लफ्ज़ इन्ना लिल्लाह को हाईलाइट कर लें बस। हम तो अल्लाह के हैं, हम तो इस दुनिया के लिए बने ही नहीं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ जाएंगे। इंसान जब अपने घर पहुंच जाता है ना तो मुतमईन होता है, शादी होती है ना तो इंसान कहता है चलो किनारे लग गया, यही था मेरा असल मुकाम, अब मुझे यहाँ ज़िंदगी गुजारनी है, यही है मेरी दुनिया, क्योंकि अपना घर मिल गया ना। सफ़र से थक के आप अपने घर आते हैं, हम कहते हैं शुक्र है अपने घर पहुंच गए, चाहे कुटिया ही हो, ज़मीन पे भी कोई बैठे का कहेगा अपना घर आ गया। ये दुनिया मोमिन का घर नहीं है, अल्लाह ने इंसान को भेजा था कुछ कर लो, और उसमें इंसान को पहले से सब कुछ सेव करके भेजा। तो ये था फितरत और रूह का ताल्लुक। दूसरी चीज़ पे थोड़ी सी बात करेंगे, पहले आप बताइए कि इतनी बात में कोई सवाल या कुछ, क्योंकि देखिए कि ये टॉपिक एक मुकम्मल टॉपिक है, और मैं इंशाल्लाह वहीं रोक दूंगी जहां हमारा वक्त पूरा होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम सारी चीज़ें लें, जो लेते हैं उसी को जज्ब कर लें, आगे थोड़ी सी बात पलटने वाली है। यहाँ तक जो बात है उस पर कोई बात, कोई कमेंट, कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, और अब थक भी चुके होंगे ना, तकरीबन हम लोगों ने 1 घंटा बात की है। जी, 1 घंटा 7 मिनट बात हुई है। जी, कोई कुछ कहना चाहता? जी खाला, ऑनलाइन पे जा रहा है, उधर से कोई लिखना चाहता है लिखें, आप कुछ कहना चाहती हैं जी, आप आ जाइए, इधर आ जाएंगे, चलें ऊंची बोले मैं फिर दोहरा दूंगी। यानी अल्लाह ने कहा था जाओ, आदम नहीं जाना चाह रहे थे। जी, तो यही हमने नुक्ता कोट किया था ना, कि इंसान की फितरत में किस दुनिया में उसका दिल नहीं लगता, वो ऊपर जाना चाहता है। ठीक है जी, और कोई बात? जी कोई और नहीं तो फिर आगे चलो, दूसरी चीज पे बात करते हैं, और ऑनलाइन पे लिखेंगे या इनको बाद में मौका दे देते हैं तो फिर इंशाल्लाह, अगर कोई कमेंट आया तो मुझे बताइए। जी पर किसने ये प्लीज, लिखना चाह रहे? चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह इन पर बात करते हैं। दूसरी चीज जिससे मिलके इंसान बना, दूसरा पुर्जा कह ले हा? वो है जिबिलत। पहला क्या था? फितरत, नेचर। ठीक है, दूसरी क्या है? इंसान की जिबिलत, जिसको इंग्लिश में इंस्टिंक्ट कहते हैं। ये भी अल्लाह ने पैदा किया, जैसे फितरत अल्लाह ने बनाई है ना इंसान की, इसी तरह कुछ चीज़ें जबिलत में डाल दी हैं। मसलन क्या? मसलन आप देखिए कि बच्चे का माँ से गजा लेना, कोई नहीं सिखाता कि बच्चा माँ का दूध कैसे पिए, अल्लाह ने उसकी जबिलत में डाल दिया कि दूध कैसे पीते हैं। गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, चिड़िया का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, सब में ये है। यहाँ आपको एक चीज़ पीछे से फ़र्क बता दूँ कि फितरत सिर्फ इंसानों की होती है जो शुरू में, लेकिन ये जो जबिलत है ना ये जानवरों की भी होती है। इसलिए अभी इसी तकाबुल में साथ साथ सुनिएगा, अब जो बातें आ रही हैं ना ये जानवरों और इंसानों की कॉमन है। और वो क्या? मसलन खौफ महसूस करना, एकदम शोर आता है तो बच्चा भिदक जाता है ना, जानवर भी बिदकता है, आवाज सुन के गर्मी सर्दी का महसूस करना। फिर इसी तरह तीसरी चीज जो इंसान की और जानवर की जबिल्लत में है वो है अपनी हिफाजत करना। हर बंदा अपनी हिफाजत करना चाहता है। आप देखिए कि जब बिल्ली को देखते हैं ना तो मुर्गी के बच्चे उसके पीछे पीछे भागते हैं, और जरा कोई नुकसानदेह चीज आती है तो इंसान का बच्चा भी माँ के पीछे भागता है। ठीक है, फिर इसी तरह चौथी चीज है अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। आप कह सकते हैं कि बकाए जात और बकाए नस्ल इंसान और जानवर की फितरत में है, उसकी जिबिल्लत में है। हर बंदा अपनी नस्ल आगे बढ़ाना चाहता है। चलिए थोड़ी सी बात इस पे भी कर लेते हैं। ये जो आज के दौर में नारा है कम बच्चे खुशहाल घराना, क्या फिर ये जबिल्लत का तकाजा है? इसको एनिमल इंस्टिंक्ट भी कहते हैं ना। यानी आज अगर कोई बच्चे पैदा नहीं करता तो क्या ये खुशी की बात है? मुझे तो किसी की बात सुन के हैरत ही हुई, और उनके भोलपन पे हैरत ही, कहने की मुझे शर्म आती किसी को बताते हुए कि मेरे चार बच्चे हैं। तो मैंने कहा आप क्या चाहते? मैं अपने दिल में सोचती हूँ कि चार बच्चे तो सबसे बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है ना, भाई का भाई, बहन की बहन। बस कहते बस दो बच्चे हों, यानी ना बहन को भाई मिले ना भाई को बहन मिले। आप अपने लिए ये चाहती हैं? हम सब सोचें, हमारा हम ये चाहते हैं हमारी कोई बहन ना हो, हमारा भाई कोई ना हो, नहीं चाहते ना? तो जो हमारे आगे बच्चे होंगे क्या वो चाहेंगे कि हम बड़े हों तो तन्हा हों? मैंने देखा जो अकेला बच्चा होता है ना वो तो सारी जिंदगी माँ के लिए भी एक गमी होता है, और माँ उसके लिए और वो माँ के लिए मुश्किल का सबब है। एक कहीं सुनी थी, थोड़ी सी लाइट बात करता हूँ, शायद बड़ी बोझल बातें आज हो रही हैं, मेरा ख्याल है समझ आ रही है ना बातें। तो वो किसी इंग्लिश स्पीकर थे तो उनकी नॉन मुस्लिम स्पीच में मेरे मियाँ ने ये बात सुनी थी तो उन्होंने मुझे सुनाई। यानी कोई एक कोर्स कर रहे थे तो उसमें स्पीकर ने सुनाई बात कि एक माँ थी तो उसके बहुत सारे बच्चे थे, बेटे भी थे बेटियाँ भी थे। तो आपको पता है कि जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो अमूमन बच्चे भी ये सोचते हैं कि हमें शर्म आती है लोगों को बताते हुए कि हम इतने बच्चे हैं। तो उनमें से एक बच्चा था जो थर्ड लास्ट था, मेरा सातवां बच्चा था, कुछ 11 बच्चे थे उसके या वट एवर जो भी थे। तो वो एक दिन अपनी माँ से कहने लगा, मम्मी वाई यू हैव सो मैनी किड्स, कि मम्मी तुम्हारे इतने बच्चे क्यों है ना? उसकी माँ ने कहा, अच्छा तुम मुझे बताओ वेयर डिड आई स्टॉप, मैं कहाँ रुकती? तो कहने लगा आफ्टर मी। बात वाजी हुई, यानी खुद दुनिया में आना चाहता लेकिन कहता है, मैं पैदा हो जाता फिर आप खामोश होते, और वो आखिरी से कोई दूसरा तीसरा बच्चा था। तो आप सोचिए अगर हमारे माँ बाप ने भी फैमिली प्लानिंग की होती तो फिर तीसरा बच्चा तो शायद दुनिया में आता ही ना ना। बच्चे अकलमंद है ना। तो इंसान अपनी नस्ल बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपको ये बातें क्यों बता रही हूँ कि आज किस तरह फितरत और जबिल्लत को मसख किया जा रहा है। बच्चे पैदा ना करना आज का फैशन है। पहले अपने बच्चे पैदा नहीं करते, फिर जानवरों के बच्चे पालते हैं, क्या कह के कि ये एनिमल राइट्स भी हैं, तो अब अपने क्यों नहीं करते? मैंने खुद देखा, अभी मैं कहीं जा रही थी तो मेरे साथ बहुत ओल्ड 80s में होंगी एक खातून बैठी, बहुत अच्छी लगी मुझे भी। मैंने उनसे हाय बाय किया तो मैंने पूछा आप कहाँ जा रही हैं? जाहिर है जहाँ मैं जा रही थी वहाँ वो भी जा रही थी। तो पूछेंगे क्यों जा रही हो? तो मैं कब की तो कहेंगी आई एम गोइंग टू मीट माई पपी। मैं कहा पपी इसका बेटा होगा? वो तो चला बेटे का कुत्ता, कि मैं अपने वो बच्चे के कुत्ते को मिलने जा रही हूँ। तो आप देखिए कि बुरी बात तो नहीं, अल्लाह ना करे हम मजाक नहीं उड़ा रहे कि जानवरों से मोहब्बत, लेकिन फितरत है कि इंसान इन दोनों को साथ लेके चले। ठीक है, अब आप देखिए कि इंसान और दो चीज़ों से मिला ना, फितरत और जबिल्लत। अब क्या होता है कि फितरत और जबिल्लत इनके मिलने की जगह दिल है। अब आगे बातें बड़ी छोटी सी सेंसिटिव सी हैं, शायद समझ जाएंगे। इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में, यानी एक तरफ फितरत है एक तरफ जबिल्लत, ये दोनों के बिल्कुल मिडल पार्ट है ना, वो इंसान की आदत होती है। आदत लफ्ज आदत हैबिट्स, ठीक है। हैबिट कैसे हैबिट बनती है? जिस बंदे पे फितरत गालिब होगी ना, अल्लाह ताला चाहता है कि हमारा तल्लुक हमारी रूहों से रहे, हम आखिरत के लिए खुश रहें, हम वो काम करें। जो बंदा अपनी फितरत की तरफ रुख करता है ना, तो वो बंदा, उसकी आदतें अच्छी होने लगती हैं, उसकी आदतें अच्छी हैं, नेक हैं। आदत क्या है? आदा से हर वो चीज़ जो बार बार की जाए, ठीक है। लेकिन जब इंसान के ऊपर ये हैवानियत या इंस्टिंक्ट, सिर्फ खाना पीना, या देखिए जिबिलत में जितनी चीज़ें ना, इसमें से कोई नाजायज नहीं है। खाना पीना, हिफाजत करना, सेक्स, फिर प्रोटेक्शन, लस्ट, जो ह्यूमन हैबिट्स है ना, जो एनिमल हैबिट्स हैं, ये सब जायज़ हैं। लेकिन खराबी कहाँ पैदा होती है? जब इसका तवाज़न बिगड़ जाता है। आपने वो देखा है कि पेंडुलम होता है, बिल्कुल मिडल पार्ट पे रहता है तो वो सही है, ज़रा इधर से उधर करेंगे तो वो गिर जाएगा। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि इंसान के ऊपर उसकी फितरत का रंग गालिब रहे। जब हम फितरत को मसख कर देते हैं ना, तो हमारी आदत हैवानियत की तरफ चली जाती है। फिर ज़िंदगी का मकसद खाना पीना पहनना ओढ़ना, लस्ट, ग्लैमर, हर वो चीज़ जिससे लज़्ज़त मिले, फिर इंसान इस दुनिया में रहना चाहता है, उसको लज़्ज़त मिलती है, ये चीज़ें उसकी हैबिट्स बन जाती हैं। और हैबिट जो है ना, जब पक्की होके हो जाती है ना, तो वो इंसान की तबीयत बन जाती है। कहते ना, मेरे इस बच्चे की तबीयत ही ऐसी है। इस्लाम क्या चाहता है हमसे? कि हमारी हैबिट्स चेंज कराए। हमारी हैबिट्स लीड्स टू आवर तबीयत। अच्छी आदत अच्छी तबीयत को जन्म देती है।
तबीयत का मतलब नेचर है, नेचर
तबीयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं, बिहेवियर कह सकते हैं। जी, बिहेवियर हो सकता है। आप कह लें कि जो काम हम ज्यादा करते हैं ना, या बार बार करते हैं ना, वो हमारी एक पहचान बन जाती है। बस आप देखिए कि एक शख्स है, वो बहुत बोलता है, उसकी आदत है ना। अब आदत इतनी ज्यादा बढ़ी कि ये चीज़ उसकी तबीयत का हिस्सा बन गई, वो बोल बोल के भी नहीं थकता। और दूसरा बंदा वो थोड़ा सा बोलता है तो थक जाता है ना। इस्लाम क्या चाहता है हमसे? कि हम अपने आप को रूहों के साथ जोड़ें, ना कि जिस्मों के साथ। प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल की जो बात की है ना हमने, जिस पे ये बात शुरू की थी, उसका खुलासा क्या हुआ यहाँ? हमने अपने नफ्स सोल को किस चीज़ से पाक करना है? अब आप बताएंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल कह लें या तस्किया नफ्स, तो आप बताएं कि नफ्स को हमने किस चीज़ से पाक करना है? जी, अब आपकी बारी है, आप बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही। बेअतदाली निकालनी है अपनी ज़िंदगी से, यानी इम्बैलेंस नहीं होना, दीन और दुनिया का तवाज़ुन। ठीक है, शाबाश। और इधर आपने हाथ खड़ा किया था, और क्या सीखा हमने? किस चीज़ से किसको प्योर करना है? फिर इंशाल्लाह मैं एंड पे आपके लिए वाइंड अप कर दूंगी। जी, आप। बहुत अच्छी बात की आपने, और ये भी इसी का एक हिस्सा है। इंसान का नफ्स तीन किस्म का होता है। नफ्स अम्मारा, तबीयत के एतबार से नफ्स नफ्स अम्मारा है। 13वें पारे की पहली आयत, वमा उबर्रियु नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। मैं अपने नफ्स को बेगुनाह नहीं कहता, यानी मैं कोई इतना बेगुनाह नहीं हूँ। मुझे पता है कि नफ्स बुराई की ही दावत देता है। तबीयत अल्लाह ताला ने नफ्स इंसान के ऊपर, इसी को शैतान का, इसके ऊपर रिवायतें, सुबह के भी इत्तेफाक से दर्स में ये टॉपिक थोड़ा सा आया था। लेकिन फितरतन नफ्स बुरा काम कराना चाहता है। लेकिन दूसरी ने फोर्स जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर रखी है ना, वो क्या है? मलामत की, नफ्स लवामा। ये क्या कर रहे हो? वाह, सूरत कयामा में कसम खाई है ना, नफ्स लवामा। शुरू से क्या है? किसी को आती पहली आते? नो नो, सूरह कयामा। नफ्स लवामा तो है, लेकिन उससे पहले अभी देख लेते हैं। ला उक्सिमु बियौमिल क़ियामा। जी, अस्सलाम वालेकुम। ला उक्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक्सिमु बिन्नफ्स लवामा। नफ्स लवामा की कसम खाइए। नफ्स लवामा क्या है? जो मलामत करता है, गलत काम करने के बाद इंसान के अंदर से जो टोक पड़ती है ना, ये नफ्स लवामा है। जो बंदा नफ्स अम्मारा को गालिब कर लेता है ना, उसके नफ्स लवामा की मौत हो जाती है, और वो फिर नफ्स अम्मारा बन के जहन्नुम का ईंधन बन जाएगा। और इसको जहन्नुम में डाला जाएगा। लेकिन जिसका नफ्स लवामा स्ट्रांग होता है ना मलामत, तो उससे फिर एक तीसरा नफ्स पैदा होता है, नफ्स मुतमईना। और ये नबियों का नफ्स होता है, इंसानों का नफ्स अल्लाह चाहे तो नफ्स मुतमईना के कोने पे लग जाए, लेकिन मुकम्मल इत्मीनान नबियों का। तो मैं अक्सर सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि सच्चे दीन में ठंडक कितनी है, इसकी खुशी इंसान महसूस करता है ना जब हक की तरफ आता है, दिल चाहता है उस ठंडक को महसूस करने को जो अल्लाह के नबी के दिल में थी, जो अबू बकर के दिल में थी, जो उमर के थी, जो इब्राहिम को आग में भी जला ना सकी। ये कौन सी ठंडक होती है? ये नफ्से मुतमईना की नेमतें होती हैं। तो लिहाजा अगर हम अपने आप को खुद पाक करेंगे, अगर प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल या नफ्स की हमें सफाई करनी है, तो वो क्या होगी, हम इसको कैसे देखेंगे? देखिए कि हमने तज़किया करना है सबसे पहले अपनी सोच का, और सोच में से सबसे बड़ी चीज़ अकीदा। तज़किया नफ्स सबसे पहले अकीदे में, अपने ख्यालात को एक अल्लाह के सिवा हर माबूद की अबूदियत से पाक करना है, ये हमारा गोल है। सब निकल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला की तलवार से सारे इलाहों को ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की अलूहियत समझ आएगी। उससे निचले दर्जे पे हमने तज़किया करना है अपने मामलात का। मामलात कैसे? इंसानों के साथ, हर बंदे को उसके हक पे लेके आना है। ये वही बात याद रखेंगे ना, इम्बैलेंस ख़त्म करना है। अगर बीवी की तरफ झुके तो माँ को छोड़ दिया, माँ की तरफ झुके तो घर वालों की ज़रूरियात ना पूरी की, दीन की तरफ झुके तो घर वालों को लॉक करके अंदर चले गए और कहा कि 3-4 दिन हम नहीं आएंगे तो आप भी नहीं निकलेंगे। ये भी मुझे किसी ने कल परसों बताया, 3 दिन के लिए इबादत के लिए कोई गया और बीवी को लॉक कर गया कि तुम्हें ज़रूरत ही नहीं कहीं जाने की, मैंने सब ज़रूरत की चीज़ें दे दी हैं और बच्चा बीमार हो गया, तो वो कहाँ ले जाती? फिर इसी तरह इम्बैलेंस ख़त्म करना। फिर इसी तरह आप देखिए कि इंसान ने तज़किया किस चीज़ का करना है, अपने दिल का। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, कभी आप लोग अगर ऑनलाइन पे होंगे, हमारा गोल है कि हम क्लास में आजकल एक बुक तो ख़त्म हो गई है, दूसरी जब अस्माउल हुस्ना ख़त्म होंगे तो इंशाल्लाह हम तज़किया सीरीज शुरू करेंगे। ये आज का जो पूरा टॉपिक था ना, ये उसी की तमहीद थी। और आप यकीन करें, सिर्फ मैंने आपको आज आपके ह्यूमन यानी आपकी इस बॉडी की 4 चीज़ें बताई हैं, अपने हिसाब से शायद आपको तो इतना वाज़े ना कर सकी हूँ मैं, लेकिन आज हमने सिर्फ फितरत, जबिल्लत और आदत और तबीयत को थोड़ा देखा है क्योंकि टाइम पूरा हो गया था। इंशाल्लाह अगर कभी आपको मौका मिलेगा, आप सुनिएगा, ज्वाइन करेंगे, तो हम उसमें इंसान के एक एक उस पर बात करेंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे इस 5-6 फुट के जिस्म के अंदर एक पूरा जहान आबाद है। यहाँ दिल जैसा बादशाह भी है, यहाँ ये 5 ऑर्गन जैसी रियाया भी है। शायद कुछ लोगों ने एक सीरीज सुनी थी दिल बदले वाली, पहले उसमें एक टॉपिक था दिल के लश्कर, उसमें भी थोड़ी सी इस टाइप की बातें हुई थी। चूँकि अब वक्त 2 मिनट है मेरे पास मेरी घड़ी में, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बात किसी किनारे पे पहुँच गई। अल्लाह ताला आपको भी जजा दे और जिन्होंने अरेंज किया कबूल करे, और अल्लाह ताला हमें इन बातों को सुन के अपनी अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए। जी और कोई बात है अन्ना या कोई और आपको कुछ कहना? ठीक है इंशाल्लाह। जी आप देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन इसका जवाब उतना ही आसान है जितना ये मुश्किल समझ रही हैं। इनका सवाल आपने सुना होगा कि ये कह रही हैं कि तो बड़ा मुश्किल, इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो हमें सिखाए। आपको पता है कि इंस्टीट्यूट मौजूद है और एक लफ्ज़ में उसका नाम है, कुरान नहीं है वो, हम समझे नहीं फिर, सुन्नत है। सुन्नत के इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लें, आपको अच्छी बीवी बनना भी आ जाएगा, अच्छी माँ, अच्छा बाप, अच्छा शौहर, अच्छे बहन भाई, हर मामले में अल्लाह के नबी ने हमें करके दिखा दिया, मेजबान, मेहमान, ताजिर। इसीलिए तो अल्लाह के नबी की जिंदगी के कुछ ऐसे शोबे भी हैं जो आज लोगों को समझ ही नहीं आते, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, छोटी उम्र शादी हो गई, बड़ी से हो गई, ये असल में हमें वो इंस्टीट्यूट से मुतारफ कराना था। ठीक है, इंशाल्लाह जी। और कोई बात जी? आप नहीं जा रही थी जी? क्यों? देखिए, आप खाना खाएं सिर्फ, पानी ना पिए, खाना हजम होगा? नहीं होगा ना। इसी तरह जैसे सिर्फ खाना खाना हजम नहीं होता ना पानी के बगैर, तो कुरान हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता सुन्नत के बगैर। वो जज्ब होती है, वो एब्जॉर्बमेंट, वो आपके अंदर एक फ्लूडेशन होती है सुन्नत से, जिंदगी का हिस्सा बनती है जी। वो हदीसों को नहीं मानते थे, उस हदीस को कहाँ कोई मानेगा जी। और कोई बात? देखिए, ये कैसे कहा कि सुन्नतें बहुत साल बाद आई, नबी सल्लम के बाद आई? नहीं, ठहरिए, इनका सवाल समझने दें जी। कैसे? देखिए, आप अपनी दोस्त से फोन पे बात कराएं, अपनी दोस्त से फोन पे बात कराएं, ये मसला उन्हीं को समझाएंगे जिनका है। ठीक है, हाँ, आप सुन के समझ नहीं सकेंगे जी। और कोई? ठीक है जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, वक्त पूरा हो गया। अब आगे कोई अनाउंसमेंट है, कुछ है तो बता दें इनको अगले दरसों की, या वट एवर, मेरा वक्त तो पूरा हो गया। क्यों नहीं करें? जिनका सवाल है कि सवाल बोलिए। रूह का असल हुसन जो है ना, इंसान का असल हुसन उसकी रूह है, तो फिर दुनिया की तालीम हासिल ना करें, आपका ये सवाल था। कोई इनको जवाब देना चाहेगा? देखिए, हमने जो इस फितरत के तकाजों में एक तकाजा था इल्म हासिल करना, और वो अल्लमा आदम अस्माकुल्लाह, ये दुनिया का इल्म था, साइंस का इल्म था ना जी, दुनिया का भी इल्म हासिल करना चाहिए जी। आप सूरह हशर की आयत है ये, सही। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल नहीं मानेंगे जी। और जी आप? मैं आप सबको एक मशवरा दूँ जो मैं कोशिश करती हूँ उस पर अमल करने की, मैं कभी किसी के ऐसे राह चलते सवाल का जवाब नहीं देती। आप लोगों को ये सवाल मसले बताना छोड़ दें, सिर्फ एक ही मसला उनको बता दें कि उनकी रूह की ग़िज़ा ये किताब है। जब तक किताब से नहीं जुड़ेंगे ना, आपकी बातें नहीं समझेंगे। मैंने तो अपने गिवअप किया हुआ, मैं कभी पार्टियों में जाऊं, शादियों में जाऊं, मैं कभी, आप लोग पूछेंगे कुछ सुनाइए, मैं कहती मेरा वक्त यहाँ आके सुनाने का, अभी आप बाद में भी पूछेंगे तो मैं आपको भी नहीं सुनाऊंगी, क्यों, जरूरत ही नहीं। इस तरह नहीं होता, तरतीब गलत हो जाती है ना, हम तरतीब बदल के लोगों को दीन नहीं दे सकते। ये अब इसमें एक बहुत अच्छा नुक्ता था, याद आ गया, लेकिन वो अब नहीं कर सकती। देखिए हम कुरान पढ़ते हैं ना, तो कुरान में तवानाई है, एनर्जी है, हम गर्म होते हैं। कुरान पढ़ने से बंदे का खून गर्म होता है। जब खून गर्म होता है ना, तो उसके बाद तज़किया का अमल तेज़ हो जाता है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, ठंडे तवे पे रोटी डाली है किसी ने कभी? कैसी होती है? अकड़ जाती है ना, सख्त हो जाती है। इस तरह ठंडे दिल पे कुरान का असर नहीं होता। पहले दिलों को कुरान की गर्मी से पिघलाएं। दिल गर्म होंगे ना, फिर देखिए यूं तज़किया होगा, यूं जाएंगे, इतनी फूल फूल के रोटियां बन जाएंगी। यकीन करें, ठंडे तवे पे रोटी ना पकाया करें, पहले उनके दिलों को गर्म करें। यदि मैं एक मिसाल दे रही हूँ ना आपको, देखिए कि तस्के कमल, असल में अभी हमने बात शुरू की थी, ये असल बात तो अब आगे इंशाल्लाह जब हम कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। आप देखिए सफाई है ना, आपने देगची साफ की है कभी? अब आपको वापस आपके घर की दुनिया में ले चलते हैं। देगची साफ करते हैं तो कैसे करते हैं? सख्त हाथों से करते हैं ना, स्क्रब भी लगाते हैं, फिर वो कई चीजें निकली होती हैं ना, तारे, सिल्वर की, व्हाटएवर। लेकिन अगर किसी का जख्म साफ करना हो तो कैसे साफ करते हैं? जख्म प्यार से साफ करते हैं। ये जो गुनाह होते हैं ना, ये रूह के जख्म है। ये हिकमत अल्लाह से लेनी चाहिए कि अल्लाह तू मुझे सिखा कि मैं सख्त हाथों से इन गुनाहों को लोगों के साफ करूं या नरम हाथों से। कुछ चीजें नरम हाथों से साफ होने की होती हैं, कुछ सख्त हाथों से। हम लोगों के जख्मों को, गुनाहों के जख्म है, जब हम इनको सख्त हाथों से साफ करने लगते हैं ना, छिल जाते हैं, फिर वो आपके हाथ ही नहीं आते, बस खून घिसने लगता है। दिल के जो दाग है ना, वो सख्त हाथों से नहीं साफ होते। उसके लिए आपको नरमी से, फॉर्म से, डॉक्टरों को देखा करें, हाथ में रुई से करते हैं। किसी का जख्म हो तो खुद, किसी जख्म वाला बंदा छिड़ता कितनी जल्दी है? आपके खुद ही जख्म ना कोई पास से गुजरेगा चीखेंगे, और सेहतमंद बंदे के साथ गुजरेंगे कुछ नहीं होता। तो जब आप किसी गुनाहगार बंदे को दीन की बात करते हैं तो वो भड़क क्यों उठता है? आपने उसकी दुखती रग पे पांव रख दिया। और जो दीन पे जमा होता है उसको वो बड़ी बड़ी बातें, बाज दफा आम दर्स होता है, लोग कहते हैं बिल्कुल अच्छा था, कोई एक कहता है सारा दर्स ही मेरे खिलाफ था, सारी चीजें मेरे बात थी, बड़े जजमेंटल बात थी, वजह के वो दुखावा था, उसको हल्की सी बात टच हो गई, ये मेरे लिए हुई है, क्योंकि उसका जख्म है ना। तो जख्म वाले हिस्सों का एक ही इलाज है कि उनसे अवॉइड करें, उन पे बैंडेज बांध दें और हील अप होने दें, प्यार से बात करें। जी देखिए, जजाकल्ला खैर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, लेकिन फिर वही बात दोहराऊंगी कि इन बातों को मौजुए गुफ्तगू ही ना बनाया करें। आप किसी नॉन मुस्लिम के पास जाएंगे ना, अच्छा जी इस्लाम में औरतों की ये मसले क्यों है? औरतों छोड़ो, लीव इट लीव इट। ये अभी सुबह भी मैं सुना के आई ना, कोई वाक्य कोई मेरे साथ हुआ, तो एक ऐसी थी, तो मेरे से मैं, यू वॉन्ट टू बी मुस्लिम? कहती नो आई डोंट वॉन्ट टू कवर। जरा सोचिए उसके फर्स्ट जुमला, आई डोंट वॉन्ट टू कवर, यानी मैं कवर नहीं करना। मैं कह डोंट वरी लीव इट, हालांकि मैं खुद पर्दे में थी। मैं कह इस होके इस वेरी साइड इशू, डोंट वरी, ना करो कवर, तुम आ जाओ इस्लाम पे। इस्लाम कवरिंग से तो नहीं शुरू होता। तो आप ये जो उठते बैठते बातें दीन के हम लोग करते हैं ना, इसने बड़ा दीन को नुकसान दिया है। दीन तालीम के रास्ते से आएगा, दरसों के रास्ते से नहीं आएगा। ये दर्स जो होते हैं ना, ये मोटिवेशन देते हैं, आपको जोड़ दिया, आज आपका दिल नरम हुआ, आप कहते हैं वाकई मुझे भी इस किताब को सीख। देखिए मैंने जितनी बातें की कोशिश की, यही से यह हदीस है, मैं मेरे जैसा बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको भी समझ आएंगी इंशाल्लाह, आती है। सिर्फ एक दफा इसको इकरा शुरू से पढ़ लें, हैं, सूरत नाज, सूरत फातिहा से लेकर सूरत नाज तक। ये किसी की मिरास नहीं है, जो अल्लाह एक को दे सकता है वो दूसरों को भी दे सकता है, सिर्फ मेहनत और अल्लाह से मदद और जो भी होगा। बाहर सीडीज है, मेरा ख्याल है आप दावा सीडीज हैं, ठीक है, तो आप लोग अनाउंस क्यों नहीं कर रहे? ये भी मैं ही करूँ। हाँ, ऑनलाइन पे नहीं है वैसे इन लोगों को, उन्हें कि इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग सुनवा देंगे, और अगर